एपिसोड 38।
थियोडोमेर मैदान जंग से लापता हो गया। किले का जो दरवाजा खुला था बंद हो गया। अंदलुसी फौज के परचम कभी के गिर चुके थे। मुसलमान अभी तक लड़ाई में मसरूफ थे। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन जैद बिन कसादा का हुक्म था कि किसी को जिंदा ना रहने दिया जाए। गन्नाता वहां से कुछ दूर था। ईसाई फौज का सफाया करके सालार जैद ने गन्नाता की तरफ पेश कदमी की। उसने इसी फौज को यह मुजदा सुनाया था, अल्लाह ने उन्हें फतह से नवाजा है और अब किले में दाखिल होकर शहर पर कब्जा करना है, और ये भी कि शहर में कोई मुकाबला करने वाला नहीं होगा। जब इन्हें किला नजर आने लगा तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि दीवारों पर इंसानों की एक दीवार खड़ी थी। मुहासरे के वक्त हर किले पर सिपाही मौजूद होते थे, लेकिन इतने नहीं कि उनके कंधे एक दूसरे से मिले हुए हों। इनके सरों पर जंगी खूदें थी और इनके जिस्मों के बाला हिस्से जिरापोश थे। नहीं, अभी नहीं, सालार जैद ने अपने नायब सालार से कहा। हम तो समझे थे कि गन्नाता की फौज को हमने खत्म कर दिया है, लेकिन शहर की दफा में इससे कहीं ज्यादा फौज नजर आ रही है। मस्कूरा बाला मौरिख लिखते हैं कि सूरज गुरूब होने के लिए उफक के करीब पहुंच गया था। जैद बिन कसादा ने किले का मुहासरा कर लिया, लेकिन अब उसकी फौज और कम हो गई थी क्योंकि कुछ मुजाहिदीन शहीद हो गए और बहुत से जख्मी भी हुए थे। कैफियत मायूसी वाली हो गई थी। फिर भी दीवार के करीब जाकर सालार जैद ने ऐलान करवाया कि अपनी फौज का अंजाम देख लो। अगर बगैर लड़े शहर के दरवाजे खोल दोगे तो अमन अमान में रहोगे, वरना सबका कत्ल कर दिया जाएगा। इस ऐलान का कोई जवाब नहीं आ रहा था। उमूमन यूं होता था कि मुहासिरा करने वाले ऐसा ही अल्टीमेटम दिया करते थे और महसूरीन की तरफ से तंजिया और धमकी आमेज जवाब मिला करता था, लेकिन जैद बिन कसादा के ऐलान के जवाब में दीवार से कोई जवाब या कोई आवाज नहीं आई थी। खिलाफ तवक्को दरवाजा खुला और थियोडोमेर हाथ में सफेद झंडा लिए बाहर आया। पहली हैरतनाक बात यह थी कि थियोडोमेर सुलह का झंडा उठाए खुद बाहर आया था, और ज्यादा ताज्जुब ये देखकर हुआ कि उसके साथ सिर्फ एक मुहाफिज था। कोई जर्नेल या बादशाह मुहाफिजों के पूरे दस्ते के बगैर इधर उधर नहीं जाता था। थियोडोमेर के साथ जो मुहाफिज था वो करीब आने पर पता चला कि मुहाफिज नहीं बल्कि वो एक नौजवान मुलाजिम है। ईसाई बादशाह और बड़े जर्नेल मुहाफिजों के अलावा इस किस्म के एक दो मुलाजिम अपने साथ रखा करते थे। जैद बिन कसादा थियोडोमेर के इस्तकबाल के लिए जरा आगे चला गया। फिर दोनों कमांडरों का आमना सामना हुआ। मैं अपने से बड़े जर्नेल के हुक्म से आया हूँ, थियोडोमेर ने कहा। यह जर्नेल इस इलाके की तमाम फौज का कमांडर है। उसने आपके लिए पैगाम भेजा है कि किले के अंदर इतनी ज्यादा फौज है, अगर आप मुहासिरा करेंगे तो कम अज कम एक साल मुहासिरे में बैठे रहेंगे। शहर की दीवारों पर देख लें, इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि शहर में कितनी ज्यादा फौज होगी। अगर इतनी ज्यादा फौज मौजूद है तो फिर सुलह की क्या जरूरत है, जैद बिन कसादा ने अपने तर्जमान की मारिफत थियोडोमेर की बात सुनी और जवाब दिया। तुम मेरी फौज को देख रहे हो कि पहले से भी कम रह गई है। हमारा जर्नेल रहमदिल इंसान है, थियोडोमेर ने कहा। उसे पता चल गया है कि उसकी फौज किस बुरी तरह कट गई है और आपका भी नुकसान हुआ है। वो कहता है मजीद खूनरेजी उसकी बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए वह सुलह करना चाहता है। अगर आप सुलह नहीं करना चाहते तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास बहुत ज्यादा फौज है जिससे आप किला नहीं ले सकेंगे। जैद बिन कसादा को एक खतरा महसूस होने लगा कि यह धोखा हो सकता है, लेकिन थियोडोमेर जिस अंदाज से बात कर रहा था इससे मुतासिर होकर जैद बिन कसादा सुलह पर राजी हो गया। लेकिन सुलह के शरायत हमारी होंगी, थियोडोमेर ने कहा। सबसे बड़ी शर्त यह होगी कि शहरियों के जान और माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी होगी, और आपका कोई सिपाही किसी शहरी के घर में दाखिल नहीं होगा। दूसरी शर्त यह है कि खजाने में जो कुछ भी है वो हम खुद आपके हवाले करेंगे, और तीसरी शर्त यह है कि मुझे आप जंगी कैदी नहीं बनाएंगे बल्कि मैं किले में रहूंगा اور میں آپ کی طرف سے صوبے کا گورنر رہوں گا، میں آپ کی اطاعت قبول کرتا ہوں اور آپ کے احکام کا پابند اور آپ کا وفادار رہوں گا۔ صلح کی یہ شرائط تحریر کی گئیں اور زید بن قسادہ نے اس دستاویز پر اپنے دستخط کر کے اپنی مہر بھی لگا دی۔ صلح کی یہ شرائط تحریر کی گئیں، علی الصبح آپ کو شہر کے دروازے کھلے ہوئے ملیں گے، تھیوڈومیر نے کہا اور چلا گیا۔ ابن قسادہ، سالار زید کے ایک نائب سالار نے اسیلی آواز میں کہا، تم نے اپنی اور ہم سب کی موت کے پروانے پر اپنی مہر لگا دی ہے۔ ہاں ابن قسادہ، ایک اور عہدیدار نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بہت زیادہ تھک گئے ہو، اس لیے تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا۔ مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، زید بن قسادہ نے کہا، تمہیں یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ تھیوڈومیر ہمیں اپنے پھندے میں لے جا رہا ہے، ہم اندر جائیں گے تو شہر کی فوج اور تمام شہری ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ہمارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ ہاں، عہدیدار نے کہا، یہی ہوگا۔ تم میں عقل کی کمی ہے، سالار زید نے کہا، کوئی قلعے دار دشمن کے چند آدمیوں کو بھی قلعے میں داخل نہیں ہونے دیتا، ہماری تو فوج ہے جس کے لیے وہ صبح دروازے کھول رہے ہیں، انہیں معلوم ہے اور یہ دیکھ چکے ہیں کہ بربر مسلمان کم تعداد میں ہوں تو بھی ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ وہ رات اضطراب میں گزر رہی تھی، ارد گرد لاشیں بکھری ہوئی تھی، زخمیوں کی کرپناک آہوزاری سنائی دے رہی تھی۔ بربر اندلس کے مرے ہوئے فوجیوں کے ہتھیار اکٹھے کر رہے تھے، ان کی جامع تلاشی لے رہے تھے، گیدڑ، بھیڑیے اور دیگر جنگلی جانور بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ زید بن قسادہ رات بھر سو نہ سکا، اس کی اور بربروں کی یہ پریشانی بالکل قدرتی تھی کہ انہیں کسی پھندے میں پھانسنے کی ترکیب کی جا رہی ہے۔ زید نے اپنے عہدیداروں سے کہہ دیا تھا کہ وہ رات کو بیدار اور چوکس رہیں اور صبح قلعے میں داخل ہوتے وقت آنکھیں گھما گھما کر ہر طرف دیکھتے رہیں۔ رات گزر گئی، ایک مجاہد نے اذان دی، لشکر نے زید بن قسادہ کی امامت میں فجر کی نماز پڑھی۔ سالار زید نے ایک بار اپنے عہدیداروں سے کہا کہ قلعے میں داخل ہوتے وقت ہوشیار رہیں۔ صبح کا اجالا سفید ہوا ہی تھا کہ قلعے سے ایک آدمی آیا اور سالار زید بن قسادہ سے کہا کہ جنرل تھیوڈومیر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ سالار زید نے اپنے لشکر کو اس کے پیچھے آنے کو کہا، لشکر تیار تھا، پیادے اور گھڑ سوار اس کے پیچھے چل پڑے۔ توقع تھی کہ گرناتا کی شہر پناہ پر فوج پہلے کی طرح کھڑی ہوگی، لیکن دیوار پر ایک آدمی بھی نہ تھا۔ تھیوڈومیر قلعے کے بڑے دروازے سے باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا، اس کے ساتھ وہی ایک آدمی تھا جو پہلے بھی اس کے ساتھ دیکھا گیا۔ اس نے زید بن قسادہ کا استقبال بڑے اچھے طریقے سے کیا اور اسے قلعے کے اندر لے گیا۔ کیا میری فوج بھی قلعے میں آ سکتی ہے؟ سالار زید نے پوچھا۔ ہاں، تھیوڈومیر نے کہا، کیا میں نے معاہدے میں یہ نہیں لکھوایا کہ ہم قلعہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں؟ مجاہدین کا لشکر زید بن قسادہ کے اشارے پر قلعے میں داخل ہو گیا۔ مجاہدین کو جس طرح سالار زید نے ہدایت دی تھی اس کے مطابق ہر مجاہد چوکس اور تیار تھا۔ بربر ہر طرف نظریں دوڑا رہے تھے، قلعے میں جہاں تک نظر جاتی تھی کوئی فوجی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مکانوں کی چھتوں پر عورتیں اور بچے کھڑے تھے، باہر بھی عورتیں، بچے اور بوڑھے آدمی خاموش کھڑے نظر آ رہے تھے۔ اس سے سالار زید کا شک اور پختہ ہو گیا کہ یہ کوئی پھندا ہے۔ آپ کی فوج کہاں ہے؟ سالار زید نے پوچھا، اور قلعے دار کہاں ہے؟ یہاں کوئی فوج نہیں، تھیوڈومیر نے جواب دیا، یہاں آپ کو فوج کا ایک سپاہی بھی نہیں ملے گا، یہاں صرف میں ہوں، کوئی قلعے دار نہیں۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ مجھ سے بڑے جرنیل نے مجھے صلح کے لیے بھیجا ہے، میرا حفاظتی دستہ بھی نہیں، یہ جو ایک آدمی یہاں نظر آتا ہے یہ میرا ذاتی ملازم ہے، یہ واحد شخص ہے جس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں آپ کی اس بات پر کس طرح یقین کر لوں؟ زید بن قسادہ نے کہا۔ فوج کوئی اتنی چھوٹی سی چیز نہیں جسے چھپایا جا سکے، تھیوڈومیر نے کہا، میں نے یہ سارا شہر آپ کے حوالے کر دیا ہے، آپ کے پاس فوج ہے، سارے شہر کی تلاشی لے لیں، میرے سوا آپ کو یہاں کوئی فوجی نظر نہیں آئے گا۔ میری فوج آپ کی فوج کے ہاتھوں کٹ چکی ہے، اور کوئی زندہ بچا ہے तो वह भाग गया है। आप झूठ बोल रहे हैं, जैद बिन कसादा ने कहा। मैं उस फौज को देखना चाहता हूँ जिसे मैंने शहर की दीवारों पर कंधे से कंधा मिलाए खड़े देखा था। थियोडोमेयर हंस पड़ा और उसने औरतों, बच्चों और बूढ़ों की तरफ अपना हाथ घुमाकर इशारा किया। यह है वो फौज जिसे आपने शहर पनाह पर खड़े देखा था। थियोडोमेयर ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं इस फौज को एक बार फिर शहर पनाह पर खड़ा कर सकता हूँ। मैंने आपको धोखा देकर सुलहनामे पर दस्तखत करवाए हैं। मेरे पास कोई फौज न रही तो मैंने भागने के बजाय ये तरीका इख्तियार किया कि औरतों, कमसिन लड़कों और बूढ़ों को फौजी कपड़े पहनाकर और इनके सरों पर कूदे रखकर इन्हें दीवार पर खड़ा कर दिया। आप समझे कि किले में बहुत ज्यादा फौज मौजूद है। यह धोखा देने की क्या जरूरत थी, जैद बिन कसादा ने पूछा। क्या आप इन औरतों और बच्चों को हमारे हाथों मरवाना चाहते थे? अगर मैं किला सर करने का इरादा कर लेता तो ये मासूम जाने हमारे तीरों से छन्नी हो जाती तो मैं बाकी उम्र अल्लाह से इस गुनाह की बख्शिश मांगते गुजार देता। आप ये न समझ बैठे कि मैं शहर पनाह पर इतनी ज्यादा फौज को खड़े देख कर डर गया था और इस डर से सुलहनामे पर आपकी शरायत पर अपनी मोहर लगा दी। मैं ये जानता था, थियोडोमेयर ने कहा। मैं आपको डरा नहीं रहा था। मेरा मकसद ये था कि आप किला ले लें और मजीद खूनरेजी न हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने आपके साथ जो मुआहदा किया है ये उन फौजी मुआहदों जैसा नहीं होगा जो फौजों के दरमियान होते ही रहते हैं। मैं सच्चे दिल से आपकी इताअत कबूल कर चुका हूँ। मैं अपनी कोई फौज नहीं बनाऊंगा बल्कि मैं आपका मातहत रहूंगा। मौरिखों ने यह वाकया बयान करके लिखा है कि जैद बिन कसादा थियोडोमेयर की दानिशमंदी से इतना मुतासिर हुआ कि उसने अपने सिपह सालार तारिक बिन ज़ियाद से पूछे बगैर थियोडोमेयर को इस सूबे का गवर्नर मुकरर कर दिया, लेकिन उसे एक अरब हाकिम के मातहत रखा। कर्नाटा की आबादी में यहूदियों की अक्सरियत थी। चूंकि यहूदी अंदलुस के बादशाह रैडरिक से तंग आए हुए थे इसलिए वह मुसलमानों के वफादार हो गए। कर्नाटा में शहरी इंतजाम और उमूर को चलाने के लिए सालार जैद ने मुसलमानों के साथ यहूदी और ईसाई भी मुकरर किए। मुसलमानों की यह कमजोरी थी कि उनके पास ऐसे आदमियों की कमी थी जो उमूर सल्तनत चलाने के अहल होते। इस कमी को ईसाइयों और यहूदियों से पूरा किया गया। आगे चलकर ये यहूदी और ईसाई बगावतों का बास बने और उन्होंने सल्तनत इस्लामिया को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर न छोड़ी। इस दौरान जब मुकीज रूमी और जैद बिन कसादा अपने अपने हदफ की तरफ जा रहे थे, तारिक बिन ज़ियाद तुले तुला की तरफ पेश खदमी कर रहा था। जूलियन और ओपास उसके साथ थे। इन्हें तारिक के साथ ही होना चाहिए था क्योंकि तुले तुला अंदलुस का दारुल हुकूमत था। यह बादशाहों की गद्दी थी, इसका दिफा बहुत मजबूत था। जूलियन और ओपास ने तुले तुला और इसके दफा के मुतालिक तारिक को जो तफसीलात सुनाई थी, इनसे इस शहर की तफसीर यह बनती थी कि यह शहर दरियाए टैक्स के किनारे पर ही आबाद नहीं था बल्कि यह दरिया इस शहर के इर्द गिर्द घूम कर आगे जाता था। दरिया के साथ ही एक वसी और गहरी झील थी जिसमें दरिया का पानी गिरता था। एक लंबी चौड़ी चट्टान में से सुरंग निकाली गई थी। इस सुरंग से दरिया का पानी झील में जाता था। यही वह झील थी जिस पर ओपास और मेरीना की मुलाकात हुई थी। ओपास मजजूब और मजनून फकीर की बहरूप में था। तुले तुला को एक तो दरियाए टैक्स दफा मुहैया करता था, दूसरे ये कि एक किलाबंद शहर कासी बुलंदी पर आबाद किया गया था। किले और शहर की दीवारें बहुत वजनी और ज्यादा हजम वाले पत्थरों से बनाई गई थीं। बास पत्थर इतने बड़े थे जैसे पूरी चट्टान उठाकर वहां रख दी गई हो। शहर के इर्द गिर्द दीवार के साथ साथ बहुत चौड़ी और कासी गहरी खंदक थी। इसमें लकड़ी के नुकीले कील गड़े हुए थे जो खंदक में उतरने वाले को बुरी तरह जख्मी करते और इसे बाहर निकलने के काबिल नहीं रहने देते थे। जो बादशाह तख्त नशीं हुआ उसने तुले तुला की मजबूती में इजाफा किया। जब गोत आए तो उन्होंने इस शहर को इतना ज्यादा मजबूत बना दिया कि इसे नाकाबिल तस्कीर शहर कहा जाने लगा। तारिक बिन ज़ियाद ने मैदानों और पहाड़ी इलाकों में आमने सामने लड़ाइयां लड़ी थी। उसने 12,000 मुजाहिदीन से अंदलुस की 1,00,000 फौज को शिकस्त दी थी, लेकिन किला सर करना बिल्कुल ही मुख्तलिफ मुहिम थी। इसके तौर तरीके कुछ और थे। फिर तुले तुला जैसे नाकाबिले तस्कीर किले को सर करना तो नामुमकिन की हद तक मुहाल था। طارق اللہ کے بھروسے پر جا رہا تھا.
پیشکش رہبر ٹی وی.